नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा के पहले चरण में आज रात ब्रिटेन पहुंचेंगे। वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता करेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। विपक्षी दल विशेष गहन पुनरीक्षण और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे थे। देश में पिछले 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के उत्पादन में 6 गुना वृद्धि। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता का तीसरा दौर आज तुर्की के इस्तांबुल में शुरू होगा। और मैनचेस्टर में इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने चायकाल तक 3 विकेट पर 149 रन बनाए। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा के पहले चरण में आज रात ब्रिटेन पहुंचेंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बातचीत करेंगे और किंग चार्ल्स तृतीय से भेंट करेंगे। आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम कुमार दोरई स्वामी ने कहा कि इस दौरान मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं और इसका दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
Prime Ministers consistently held the view that we must build ties with traditional and important partners. Making a short but really focused trip suggests to us that the Prime Minister places great emphasis on getting this relationship, not just to maintain it at its current trajectory, but to lift it to its next level.
हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा दोनों देशों के लिए लाभदायक होगी।
भारत को जानिए के विजेताओं के भी श्री मोदी से मिलने की संभावना है। इससे पहले भारत से प्रस्थान के समय अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, जिसमें हाल के वर्षों से उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मिस्टर कीर स्टारमर के साथ अपनी बैठक के दौरान उन्हें दोनों देशों में समृद्धि, विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आर्थिक साझेदारी को और बढ़ाने का अवसर मिलेगा। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, लंदन।
यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के निमंत्रण पर 25 से 26 जुलाई तक मालदीव की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी दल बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे थे। लोकसभा में दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए आसन के सामने आ गए। शोर शराबा जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से सदन चलने की अपील करते हुए कहा कि देश की जनता उनके आचरण को देख रही है।
सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप जाइए, सदन में बैठिए, मुद्दों पर चर्चा करिए। प्रश्नकाल पर हर मुद्दों पर, हर विषय पर नियम प्रक्रियाओं के तहत आपको चर्चा और संवाद करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा।
राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति बनी रही। हंगामे के बीच ही पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्र में माल ढुलाई विधेयक 2025 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया, लेकिन विपक्षी दलों के हंगामे के कारण चर्चा नहीं हो सकी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने के दावों पर विपक्ष के सवालों का जवाब न देने का आरोप लगाया। संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहता है। कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर भी सवाल उठाए। देश में पिछले 10 वर्षों में मोबाइल निर्माण सहित इलेक्ट्रॉनिक सामानों के उत्पादन और निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उत्पादन पिछले वित्त वर्ष में 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया। ये वर्ष 2014-15 में 1,90,000 करोड़ रुपए था। ये वृद्धि 6 गुना से अधिक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज लोकसभा में ये जानकारी दी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत में एक मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था है। लोकसभा में आज ये जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि स्टैनफोर्ड एआई रैंकिंग में भारत एआई कौशल, क्षमताओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की नीतियों में शीर्ष देशों में शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय द्वारा कल श्री धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई। सोमवार को श्री जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रारंभिक गतिविधियां पूरी होने के बाद आयोग उपराष्ट्रपति पद के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत 98% से अधिक मतदाताओं को शामिल किया गया है। आयोग के अनुसार 15 लाख से अधिक मतदाता गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। आयोग ने कहा कि सभी पात्र मतदाताओं को अगले महीने की पहली तारीख को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची के मसौदे में शामिल करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित समय से 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में 2014 के मात्र 1.5% से 2025 में 20% तक की इस छलांग से 1,36,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना के बाद संबंधित अधिकारियों ने स्थापित प्रोटोकॉल और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार पीड़ितों की पहचान की है। इस दुर्घटना पर ब्रिटेन के एक अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के संबंध में मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सभी पार्थिव शरीरों को उचित सम्मान के साथ रखा गया। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने खुफिया सूचनाओं और ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्रतिबंधित आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अहमदाबाद में आतंकरोधी दस्ते के उप महानिरीक्षक सुनील जोशी ने कहा कि आरोपी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और संदिग्ध एप्स के माध्यम से आतंकी मानसिकता का सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे थे।
10 जून को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 5 इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, ये अलकायदा जो एक प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी विचारधारा का प्रचार प्रसार देश में कर रहे हैं। बहुत लोगों को धार्मिक आधार पे डेमोक्रेसी के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध उश्केरणीजनक जो साहित्य है वो इनपे बारम्बार शेयर कर रहे हैं। टोटल 4 आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें सेंट्रल एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन में बहुत महत्व का योगदान रहा।
महाराष्ट्र सरकार ने आज बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि केवल 5 फुट से ऊंची गणेश प्रतिमाओं को ही प्राकृतिक जल स्रोतों में विसर्जित करने की अनुमति दी जाएगी। राज्य के महाधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि 5 फुट से कम ऊंची सभी मूर्तियों को कृत्रिम झीलों में विसर्जित करना होगा। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। 1927 में इसी दिन देश में पहला रेडियो प्रसारण इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ था। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और फिर बाद में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि आकाशवाणी वर्षों से शिक्षा, सूचना और मनोरंजन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
90 वर्ष में आकाशवाणी ने जो कुछ रचा वह एक प्रसारण नहीं है बल्कि एक संस्कृति की तरह है और ये भारत की सच्ची आत्मा की अभिव्यक्ति है, क्योंकि आकाशवाणी लगभग 23 भाषाओं में 182 बोलियों में प्रसारित करता है। यह वही मंच है जिसने गांधी जी से लेकर टैगोर तक को आम आदमी तक पहुंचाया।
आकाशवाणी शिलांग में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर आज भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने सार्वजनिक प्रसारण की 90 वर्षों की विरासत पर प्रकाश डाला।
Next year on June, we'll be completing 90 years as Akashvani. It would be a momentous year and we have already started the celebrations and today's celebrations is the beginning of these celebrations in the Northeast. As we approach these historic milestones, Akashvani stands renewed, relevant and ready for the future as I can see from the youngsters present here.
प्रसार भारती ने देश भर के सभी समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन चैनलों को अपने न्यूज वायर प्लेटफॉर्म प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट और डिसेमिनेशन PB शब्द पर पंजीकरण कराने के लिए आमंत्रित किया है। इससे उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली समाचार और मल्टीमीडिया सामग्री निःशुल्क प्राप्त हो सकेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता का तीसरा दौर आज तुर्की के इस्तांबुल में शुरू होगा। ये वार्ता 16 मई और 2 जून को इस्तांबुल में हुई पिछली दो वार्ताओं के बाद होगी। पहले दो दौर की वार्ताओं में कैदियों की अदला बदली पर सहमति हुई, लेकिन युद्ध विराम या व्यापक शांति समझौते की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। रूसी अधिकारियों ने यूक्रेन की तटस्थता, सैन्य गठबंधनों से हटने और कब्जे वाले क्षेत्रों पर रूसी नियंत्रण को मान्यता देने की मांग दोहराई है। इस बीच यूक्रेन ने जबरन तटस्थता को अस्वीकार कर दिया है और नाटो तथा यूरोपीय संघ की सदस्यता हासिल करने के अपने अधिकार पर बल दिया है। बात खेलों की, मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड में भारत ने इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 164 रन बना लिए हैं। सलामी बल्लेबाज KL राहुल 46 रन और यशस्वी जायसवाल 58 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम ने 3 बदलाव किए हैं। करुण नायर की जगह साई सुदर्शन तथा चोटिल आकाश दीप और नीतीश रेड्डी की जगह अंशुल कंबोज और शार्दुल ठाकुर को टीम में जगह दी गई है। भारत 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में 1-2 से पीछे है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 540 अंकों की छलांग लगाते हुए 82,727 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक बढ़कर 25,220 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 4 पैसे कमजोर होकर 86.41 रूपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार, गुजरात और पूर्वोत्तर राज्यों में भी अगले 2-3 दिनों के दौरान तेज वर्षा होगी। कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज के साथ बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में अगले 48 घंटों में हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
मौसम विभाग ने कहा है कि राजौरी, पुंछ, रामबन, रियासी, उधमपुर, जम्मू और कठुआ जिले में कल तेज बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन, पत्थर गिरने और नदियों तथा नालों में जल स्तर बढ़ने की चेतावनी जारी की है। निचले इलाकों में जलभराव की भी आशंका है। विभाग ने निवासियों, यात्रियों और अधिकारियों से बारिश के दौरान सतर्क रहने का आग्रह किया है। मौजूदा खराब मौसम को देखते हुए जम्मू संभाग के राजौरी, रियासी और रामबन जिलों में सभी शैक्षणिक संस्थान आज बंद रहे। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों से आग्रह किया गया है कि वे जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और जोखिमों को कम करने के लिए स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक सावधानियां और उपाय करें। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के पर्वतीय जिलों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इस बीच प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी आज बहुत तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा के पहले चरण में आज रात ब्रिटेन पहुंचेंगे। वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता करेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। विपक्षी दल विशेष गहन पुनरीक्षण और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे थे। देश में पिछले 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के उत्पादन में 6 गुना वृद्धि। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता का तीसरा दौर आज तुर्की के इस्तांबुल में शुरू होगा और मैनचेस्टर में इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 173 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।